क्या यारे, मैं तो जो भी काम करता हूँ ठीक करता हूँ।
आइए आइए,
बस पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए।
ठीक है, हुक्म हो गया हकीम साहब, आपको मुबारक हो।
पीर साहब जिंदाबाद।
अल्लाह अल्लाह,
हमारी अभी फसलें खड़ी हैं पीर साहब,
हम उसका भी हिसाब कर देंगे।
हम हिसाब करेंगे और आपको मुतबादल जमीन देंगे।
मलिक साहब आपने देर से फैसला किया,
मगर हकीम साहब फैसला तो दुरुस्त किया ना।
अल्लाह के फजल से दुरुस्त फैसला,
अल्हम्दुलिल्लाह। आइए गले मिलिए।
खालिद जी, तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि जमीन का कब्जा मिल गया है। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू।
शुक्रिया अंकल।
तुम्हारी खाला सुनेगी ना, बहुत खुश होगी। अच्छा, हकीम साहब को हमारा सलाम भी कहना और मुबारकबाद भी देना।
ठीक है अंकल।
तुम कब आ रहे हो और ये टेलीफोन कहां से कर रहे हो?
वो जी गांव के पीसीओ से बात कर रहा हूं, कुछ दिन की और छुट्टी चाहिए थी इसीलिए फोन किया।
अब मगर वहां करोगे क्या?
वो जी कुब्बे कत्ल और सुनारी के अगवा के मुकदमों को पुलिस संजीदगी से नहीं ले रही। मुतलका लोगों से पूछगछ के बाद उन्हें फलक शेर के कहने पर छोड़ दिया गया। मैं उन्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम अपने आप को ड्यूटी पर समझो।
शुक्रिया अंकल।
और वो जो तुम्हारा दोस्त है ना जूरा, उसे तलाश करके पेश होने के लिए आमादा करो। वो अच्छा आदमी है, मुजरिम नहीं है, वो खराब रस्म रिवाज का बागी है वो, और फिर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इत्तेजाज का उसका अपना तरीका है कार है। अब मैं अदालत में उसका दिफा करूंगा।
ठीक है अंकल, मैं जूरे को तलाश करने और उसे कायल करने की कोशिश करूंगा। आप खाला जी को मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आप सब लोगों को इसलिए बुलवाया कि अल्लाह के फजलो करम से जमीन का कब्जा तो मिल गया, अब उस पर करना क्या है?
चाचा जी मजारे रख लें या ठेके पे दे दें, जैसे आपकी मर्जी।
भाई ठीक लोग होना चाहेंगे, किसी मुसीबत में ना फंस जाएं।
अब जी कुछ लोग हैं मेरी नजर में ऐसे।
कौन है बेटे?
हैं तो कुमार, लेकिन बड़े अच्छे और एतबारी लोग हैं।
मैं भी हूं ना साथ चाचा जी।
हाँ
अनबर, तुम जिस व्यार कारोबार पे लगे हो ना उसी पे लगे रहो।
वो तो ठीक है अपा, पर साथ हाथ तो बढ़ा सकता हूं मैं।
हकीम साहब, मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि हल ना चला सकूं।
नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये घर की बात हो गई।
वैसे भी हम इस घर के मजारे ही हैं।
अरे मजारे नहीं, खुद को मालिक समझो, तू भी तो मेरे बच्चों की तरह है
बेटा। खूब कमाओ, खूब हंडाओ, हमारा तो बस गंदुम का और चावलों का थोड़ा सा खर्चा है, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
लो जी पापा, जमीन मुबारक हो, दबके वाओ और रच के खाओ।
बहु खालत, अब तुम भी तैयारी करो इलेक्शन लड़ने की। क्यों चाचा जी?
नहीं बेटा अभी नहीं, अभी इसे कुछ अरसा प्रैक्टिस करने दो, फिर शादी हो जाए तो उसके बाद देखें।
हाँ वैसे चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये वोटा इलेक्शन लड़े सूबाई असेंबली का।
हाँ
अगर वकील बन के मेरा काम और मिशन पूरा होता रहे तो इलेक्शन लड़ना इतना जरूरी भी नहीं।
अब्बा जी।
हाँ बेटा।
अभी आपने खालिद की शादी की बात की है।
हाँ।
मैं लाहौर कब जाऊँ?
अरे बेटा जब तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ।
मैं भी जाऊँ।
बासु पुत्र तुम इस हालत में जाओगे
तो फिर क्या? अबा रिश्ता तो बाहू खालिद का लेने जाना है, और फिर मेरे लकड़ी की टांग भी तो लगवा दी है।
हाँ ठीक है।
नहीं बाबा सो अभी नहीं, मैं पहले जाऊंगा, हालात का जायजा लूंगा।
फिर आप लोगों को बताऊंगा, फिर आना।
ये खालिद ने ना सारी बातें पहले सोची होती हैं, बताता बाद में।
मलिक साहब सारी रात यहीं बैठे रहने का ही रहता है, उठ के खाना तो खा ले आके।
बड़ा जरूरी और अहम मुकदमा है।
छोड़ें जी, आपका तो हर मुकदमा जरूरी और अहम होता है।
तुम चलो मैं आता हूं। अरे हाँ, आज पीर साहब और वारिस आए थे दफ्तर।
हैं? तो मलिक साहब आपने उन्हें कहना था कि घर तशरीफ लाएं।
जी नहीं बेगम साहबा, मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मेरी लड़की को यह रिश्ता कतई पसंद नहीं है, लिहाजा वो तकलीफ ना करें।
ये आपने क्या किया मलिक साहब, लड़कियों को क्या पता होता है, इनसे कौन पूछते हैं।
बेगम साहबा, वो जमाने गए जब लड़कियों को इल्म नहीं था अच्छे बुरे का। अब तालीम है, मीडिया है, यानी रेडियो टेलीविजन अखबार, अब लड़कियों को अच्छे बुरे की पहचान हो गई है।
मलिक साहब आपको पता भी था कि वो मेरे पीर साहब हैं, आपने फिर उनको नाराज कर दिया।
तुम्हें खालिद ने नहीं बताया कि ये कोई पीर वीर नहीं है। भाई कहानी यूं है कि इनके बुजुर्गों का एक पीर इनके गांव में आया हुआ था, वही फौत हो गया। अब मलिक साहब के बुजुर्गों और पीर साहब के वारसों में इनके दफनाने पर झगड़ा हो गया। पीर साहब के जो वारिस थे वो मैयत लेकर अपने गांव चले गए, और मलिक साहब के बाप दादा ने क्या किया, एक पीढ़ी दफनाई और मजार बना दिया, और मशहूर यह किया कि जनाब पीर साहब खुद आकर यहां दफन हो गए हैं। नतीजा तन मलिक मुराद अली सज्जादा नशीन बन बैठे।
और आपको यह कहानी खालिद ने सुनाई होगी है ना।
जी, सारा गांव जानता है।
इसीलिए ये अंदर हुआ था। आप देखिएगा मलिक साहब, जब इसको पीर साहब की बद्दुआ लगेगी ना तो इसका हशर क्या होता है इंशाल्लाह।
इसलिए नहीं बांधना, जहालत की भी इंतहा हो गई है।
किया फलक शेर से देकर सर्वर के कामे और मौलवी तीफे तक, क्या ये सब जुर्मे शरीक नहीं? गामू ने कातिल को पना दी, आपने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो फलक शेर का होने वाला साला है।
देखें आप हमें कुछ मोहलत दें और देखें हम इंशाल्लाह किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सब पर हाथ डालेंगे।
जब तक ये मुकदमा सही लाइनों पर नहीं आ जाता और अदालत में चालान पेश नहीं हो जाता मैं शहर नहीं जाऊंगा। मैं और एडवोकेट मलिक अल्लाह यार मिलकर आखिर तक इन मुकदमों की पैरवी करेंगे।
वो खालिद आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
शुक्रिया, अब मैं चलता हूं।
ओके।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला मास्टर साहब, कुएं में जरूर किसी ने निजासत फेंकी है या कोई जानवर गिर के मर गया है, लेकिन मलिक मानता ही नहीं।
मैं पीर साहब से खुद बात करूंगा कि कुएं का सारा पानी निकलवा कर उसे पाक करें।
मास्टर साहब आप उनसे जरूर बात करें, अगर मैंने बात की तो वो समझेंगे कि शायद मैं उनकी आमदनी कम करवाना चाहता हूं।
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी।
क्या बात है बेटा?
वो जी वो बग्गू का पुत्र मर गया, और जी उसकी बीवी तो बहुत वैन डाल रही है।
लेकिन बेटा कैसे?
वो जी बीमार था और उसको वो ना मजार वाले कुएं का पानी पिलाती रही तो ठीक हो जाएगा। बच्चे वो तो
मास्टर साहब गांव में होका करवा दीजिए कि कोई आदमी भी कुएं का पानी मत पिए।
जी बेटा, मैं अभी इसका इंतजाम करता
हूं। चौधरी चौधरी, तुमने और फलक शेर ने मुझे बर्बाद कर दिया।
होश करो बगू, आस्था बोलो।
फलक शेर मेरे बेटे का कातिल, उसी ने यह करवाया।
बंद करो, तुम खुद अपने बेटे का कातिल। क्या फलक शेर ने तुम्हें कहा था कि अपनी बीवी को उस कुएं का पानी पीने से ना रोकना?
ना मुझसे ऐसा करने को कहता, ना मेरा बेटा मुझे।
क्या शोर मचाया हुआ है तुमने बगू?
एक और कत्ल हो गया थानेदार साहब, इसकी तफ्तीश भी करो।
चुप हो जा बगू, नमक हराम।
ना यह तुम्हारी हवेली है और ना मैं चुप रहूंगा।
हा
मोला खुश रखे भाग तो वो डेरे पर पुलिस आई है, कुत्तों वाले डेरे के सारे बंदे पकड़े गए, वो मियां तीफे को भी पकड़ लिया और गामू को फिर बुलाया थानेदार ने।
क्यों?
ये तो मुझे पता नहीं है, वो बाऊ खालिद चौकी से होकर गया है, उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हो गई।
उस बाऊ खालिद का भी कुछ करना ही पड़ेगा।
होता वाता तुमसे कुछ नहीं, सिर्फ कहते ही रहते हो। डिग्गी खोती तो गुस्सा को मारते।
ये गड़बड़ बगू के बयान से हुई है, वक्त वक्त की बात है, चोरी और कामा एक ही फर्श पर सोते हैं।
चौधरी एक फर्श पर सोने से क्या होता है, चौधरी चौधरी होता है, कामा कामा होता है। अब यही देख लो, एक कामे के हिस्से में आया एक मामूली जुलाए का कत्ल, और वो भी कुबे का, और एक चौधरी के हिस्से में दोहरा कत्ल। और सके भरा को कत्ल करने वाले को रोज रोज पैदा होते हैं, अब तुम देख लेना इंशाल्लाह ये चौधरी सजा में भी अपने कामों को पीछे छोड़ जाएगा। आजो काबू, आजो शाबाश।
माँ जी अब क्या होगा, उस नामुराद को भी हमारे घर में छुपना था।
अच्छा खालिद, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूं यार।
ठहर, मैं भी चलता हूं, पता नहीं चूरा कब आएगा।
यार ये जो इश्तिहारी और मफरूर किस्म के लोग होते हैं ना, ये बताए हुए दिन और वक्त पर एहतियातन नहीं पहुंचते।
यार एक तो मुद्दा पता नहीं कहां रह गया। जीरू तू इस तरह कर, तू रात ही रुक जा, जिस तरह चूरा आए ना तूने मुझे फौरन इतला कर देनी।
नहीं बहू खालिद, मैंने जो अकेले नहीं सोना।
क्यों?
मुझे बहुत डर लगता है, मैं पहले भी एक बार अकेला सोया था, रात को कुब्बा आ गया, बिल्कुल सीधा खड़ा था।
ओ जीरू जीरू, मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज पढ़ा करो, बच्चू अगले जहान फरिश्ते मार मार के सारे कसबल निकाल देंगे।
मिया
हाँ,
तू इस तरह कर कि तू रुक जाए।
ठीक है,
जिस तरह जूरा है ना तूने मुझे इतला कर देनी है बस।
ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं,
तो मैं चले जाऊं फिर।
जाओ जाओ।
ठीक, चलो भाई।
वो चल मियां, कोई पानी का बंदोबस्त हो जाए तो वजू कर लू।
हकीम साहब ठीक कहते हैं चौधरी साहब, कुएं से कुत्ता बरामद हुआ है।
कुत्ता?
कुत्ता कहां मास्टर साहब, चौधरी साहब होगा कभी कुत्ता, चंद हड्डियां और गली सड़ी खाल निकली है जी कुएं से, वो भी चांदा मोची उठा के ले गया है।
ये हकीम बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है, और वो मलक पीर बना फिरता है, उसको गैब की सारी बातों का इलम होता है, और अपने खूह में कुत्ता गिरा हुआ है इस बात को उसे नहीं पता चला।
हाँ, पूरे गांव को कुत्ता पानी में घोल कर पिला दिया है।
पता करो किसने फेंका।
जी जिसने भी फेंका है चौधरी साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है वो कोई कुत्ता खुद उसमें जाके गिर गया।
कुत्ते इतने अन्ने और बेवकूफ नहीं होते, ये जरूर किसी इंसान की हरकत है।
ऐसे आदमी को इंसान कहना ज्यादती है चौधरी साहब।
चौधरी साहब, बाऊ खालिद ने तो गांव में पक्का डेरा लगा लिया है।
अपने घर की खाता है तुम्हें क्या इतराज है।
चौधरी साहब, उसने इतने आदमी अंदर करा दिए, लगता है सारे पिंड को अंदर करा के जाएगा।
गलियां हो जाए सुंजियां, विच मिर्जा यार फिरे।
खामोश, कोई बेकसूर पकड़ा गया है तो बताओ। अजीते
जी चौधरी साहब,
फुलकशेर कहां है?
छोटे चौधरी साहब वो तो शहर गए हुए हैं जी।
चौधरी साहब, वो गामू अभी तक अंदर है, और ब्याह की तारीख भी सर पे आ गई।
हो जाएगी जमानत ब्याह से पहले, अल्लाह खैर और बेड़े पार।
पूरी कोशिश करूंगा कि उसे पेश कर दूं, लेकिन आपको अपना वादा याद है ना।
मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है खालिद साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके खिलाफ پولیس کی حراست سے فرار ہونے کا اور سرور کے گھر پر قتل یا ڈکیتی کی نیت سے حملہ کرنے کا پرچہ درج ہے. مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں رعایت کروں گا.
شکریہ جی, بہت بہت شکریہ.
شکریہ.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ
جی؟ میں ٹھیک ہوں.
آپا کیسی ہیں؟ سنے ان کی شادی ہو گئی ہے.
شادی تو ہو گئی ہے لیکن آپ کون ہے؟ میں آپ کو پہچانا نہیں.
یہی تو ہے وکیل صاحب. نجی
میں آپ کی قصوروار ہوں, مجھے معاف کر دیں.
اور نجمہ بیٹھو, تم بھی بیٹھو. بھائی
عباس.
یس سر.
نجمہ کی چودھری صدر سے ملاقات کروانی ہے, اس کا بندوبست کر.
جی سر.
بھائی سرور, ملاقات آئی ہے تمہاری.
شکر ہے کوئی ملاقات کو تو ہے.
مجھے تھانے دار نے بلوایا.
چلو کسی بہانے تم آ تو گئی, آخر تم میری بیوی ہو.
چودھری تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ کن حالات میں نکلو اور تمہارے کیا ارادے تھے.
ان باتوں کو بھول جاؤ نجی اور مجھے معاف کر دو. دیکھو اس وقت مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے. تم قانونی طور پہ میری بیوی ہو, تم میرا مقدمہ لڑ سکتی. میں تمہیں سارے اختیارات اور حیثیت دوں گا.
تم نے میری زندگی برباد کر دی, میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی. لوگ میرے سائے سے بھی بچتے ہیں, میں تمہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں اور کیسے وہ سب کچھ بھول سکتی ہوں.
مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے اور ملے گی, لیکن تم تو مجھ پر ترس کھاؤ.
تمہیں مجھ پہ ترس آیا تھا
تو پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ کیا چاہتی ہو؟
میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک اچھا کام کر جاؤ.
کیا؟
مجھے طلاق دے دو.
اگر میں ایسا نہ کروں تو؟
تو پھر میں تمہارے پھانسی لگنے کا انتظار کر لوں.
میری اور وکیل صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے.
میں جانتا تھا پیارے تو قانونی آدمی ہے, ایسی نصیحتیں کرے گا پیار سے.
اوے اس میں تیرا فائدہ ہے.
فائدہ میرا؟ وہ تو میرا فائدہ چھوڑ یار, تو میرا یار ہے, تو میرا پیار ہے. تو بتا تجھے کچھ چاہیے تو حاضر کر دوں. اور ویسے بھی آج کل میری لاٹری نکلنے والی ہے, سارے یاروں کو نہال کر دوں گا.
مجھے تو تم معاف ہی رکھو, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں.
دیکھ جولے
میری ایک ہی خواہش ہے
کہ میں آسمانوں میں اڑنا چھوڑ کر پنجرے میں قید ہو جاؤں پیار سے.
جب آندھی اور بارش کا ڈر ہو تو پرندوں کو بھی پناہ لینا پڑتی ہے جورے.
ذرا سوچ, تو آزاد نہیں ہے.
तुमने वो लॉटरी वाली बात सुनी थी?
सुनी थी लॉटरी वाली बात, जवाब भी दे दिया था उसका।
यार मुझे जूरे की बड़ी फिक्र है।
बाबू खालिद वो कुछ लंबा हाथ मारना चाहता है। जिन लोगों के पास उसने पनाह ली हुई है ना, उनका काम ही यही है, चोरी डाका कत्ल। बड़े बड़े शहरों में लोग वारदातें करके उनके पास पनाह ले लेते।
तुझे उनके ठिकानों का पता है?
ठिकाने वो बदलते रहते हैं।
यार इससे पहले कि वो दूर निकल जाए हमें उसे वापस लाना है।
ऊपर माने तब ना।
यार वो माने या ना माने हमें ये करना होगा।
मगर ये सब कुछ होगा कैसे?
देखो तुम लोग पता करते रहो, जब भी वो घर आए ना तुमने मुझे बता देना, बाकी काम मेरा है।
अच्छा पकड़वाओगे उसे? वो बिगड़ जाएगा वो।
समझ नहीं रहे, उसकी बेहतरी इसी में है।
ओ भाई उसका मगज फिर गया ना तो मैं तुम्हें बताऊं
क्या करेगा। ओ भाई ओ मरीज की जान बचाने के लिए कभी कभी उसके हाथ पैर बांध के ना नश्ता चलाना पड़ता है। और तुम लोग फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा।
चलो जी ठीक है, शायद अल्लाह ताला को हमारा कोई इम्तिहान मकसूद है। अच्छा है, रब रख। चलो यार।
आंटी का बीवी तो ठीक है, वैसे मैंने सरदर्द की दवा दे दी है। और आप किन सोचों में गुम हो?
नारा आपा की शादी हो कितने रोज गुजर गए, खालिद अभी तक नहीं लौटे।
तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरा ख्याल है वो अपनी बहन और बहनोई को साथ लेकर ही आएंगे।
बहुत देर हो रही है नैना, अगर वो पीर साहब फिर आ गए
तो फिर क्या करना चाहिए?
तुम उन्हें खत लिखो।
मैं?
हाँ तुम्हारे तो वो भाई लगते हैं ना।
अच्छा तो फिर खत में क्या लिखूं?
यही कि वो आपा को जल्दी घर भेजे।
तो तुम खुद खत क्यों नहीं लिख देती हो और किसी कबूतर के हाथ भेज देती? वास्ता ही रब दा तू जावी वी कबूतरा ट्यो ट्यो।
नैना प्लीज
ट्यो ट्यो
बी सीरियस प्लीज।
ऑल राइट बाबा ठीक है मैं खत लिख दूंगी।
बस भी कर सका, देर हो रही है।
बस बस दो मिनट
पाप जल्दी करना।
और यार मैं तो तैयार हूं, तेरी भरजाई अभी तैयार नहीं हुई।
क्या हो गया? खालिद के ससुराल जाना, शहर जाना, शहर।
और जल्दी कर पलिए लोके, जल्दी कर।
माशाल्लाह इन कपड़ों और इस पगड़ी में तो मेरा बासु चौधरी लग रहा है।
अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए।
चौधरी लग ही नहीं रहा, जमींदार है,
आधे मुरब्बे का मालिक भी है।
अब हल जा रहे हैं बहू खालिद का रिश्ता लेने। मैंने सोचा कुछ शोशा तो होनी चाहिए।
पा बड़े अच्छे लग रहे हैं।
और तब अच्छा लगूंगा जब बहू खालिद का रिश्ता लेकर आऊंगा। आ जाओ अब, कहां लगी हो?
वालेकुम सलाम। पुत्र खालिद तुम्हारी आपा ने खास नाई को बुलवा के ना देसी घी से इतनी सारी मिठाई बनवाई है।
आपा कल वापस आ जाओगे ना? ना भैया ना, हमने कल वापस नहीं आना, हमने तो वकील साहब की गाड़ी में बैठकर पूरे लाहौर की सैर करनी, चिड़ी घर जाना है, अजायब घर जाना, मनारे पाकिस्तान देखना है।
भाई मेहमान जाता अपनी मर्जी से, आता मेजबान की मर्जी से।
आपा वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। चलो देर हो रही है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ना ट्रेन पे भी नहीं हमने जाना, हमने तो फ्लाइंग कोच पे जाना, सुना वो मोटरवे से होके जाती है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलो आप।
अच्छा चाचा।
अच्छा बेटा जीती हो।
अच्छा अल्लाह तुझे कामयाब।
पापा, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई है। बैठे।
मेरा नाम नैना है और वो खत मैंने ही आपको लिखा था। और मैं,
मुझे मालूम है आप डॉक्टर हैं।
जी जी बिल्कुल।
माशाल्लाह, जो इनके बारे में सुना था ये उससे भी अच्छी।
बहुत शुक्रिया।
हम सबको ना आपसे और अब्बास भाई से मिलने का बड़ा ही शौक था।
खालिद भाई कैसे हैं? वो शहर नहीं आए? अच्छा है, जब हम वापस जाएंगे ना तब वो शहर आएगा।
अच्छा,
वो वकील चाचा किधर है?
अब्बू आज ही सुबह कराची गए हैं, कल वापस आएंगे।
और खाला जी? आंटी अंदर कपड़े बदल रही हैं, अभी आ जाएंगी।
पापा ये रजो है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है ये रिजवाना है, बारहवीं में पढ़ती है, और ये फरजाना है सातवीं।
एक तो ये देहाती लोग कहीं आने जाने के लिए कोई वेला कवेला भी नहीं देखते।
आंटी आहिस्ता,
आप लोग
क्या कर रही हैं? आप सुनते होंगे,
आप बातें कर रहे हैं, सुनते हैं तो सुने। ये वक्त है किसी के घर आने का? हम इनके लिए मुर्गियां इस वक्त पका के बैठे हैं।
वो आंटी, मैं होटल से खाना ले आती हूँ, आप प्लीज अंदर जाए।
आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए, ये खालिद की बहन और बहनोई है।
कोई तारफ की जरूरत नहीं है, पता है मुझे खालिद के बहन और बहनोई है। आई बड़ी समझाने वाली मुझे।
अस्सलाम वालेकुम खाला जी।
वालेकुम सलाम।
वो खाला जी, हमें रास्ते में देर हो गई,
गाड़ी खराब हो गई होगी या बस लेट हो गई होगी। जो भी गांव से आता है बस ऐसे बहाने करता है।
बहाने?
अब मलिक साहब घर पे नहीं है, हम सारी औरतें हैं घर पे। अब बताओ इस वक्त कौन जाएगा बाजार तुम्हारे लिए खाने पीने की कुछ लेने?
ओ, आप इस बात की फिक्र ना करें, आप कोई खेचल ना करें, हम कोई मेहमान थोड़ी है।
वो पता खाला जी रस्ते में क्या हुआ?
जो भी हुआ ठीक हुआ, मिट्टी डालो। ये तुम्हारे घर वाला?
जी।
अच्छा, तो ये है बासु कुमार
जी। मैं ही हूं बासु कुमार, टूटी हुई टांग वाला, लकड़ी की टांग, लकड़ी की।
तो लकड़ी की टांग के साथ इतने सफर की क्या जरूरत है? अपने घर बैठते आराम से।
ये क्या कह रही है?
तुम चुप नहीं रहती
खाला जी? आपको तो पता है हम खालिद के रिश्ते के लिए आए हैं, फरा का हाथ मांगने।
पर तुम्हें भी पता है कि हम मलक अवान हैं। पर तुम्हें भी पता है कि हम मलक अवान हैं, जद्दी पुश्ती जिम्मेदार
जी। मालूम
मालूम है तो फिर इस कुमार को साथ लेकर रिश्ता मांगने के लिए क्यों चली आई? अब देखो ना, तुरे वाली पग बांध लेने से बंदा मलक या चौधरी तो नहीं ना हो जाता।
खाला जी, ये कुम्हार है पर मेरा खामन है।
ऐसे मैंने खालत को पहले ही बता दिया था कि कमियों में रिश्ता करना मेरा इज्जत का काट।
अम्मी जी कुछ
चुप करो तुम।
उठो उठो, शायद हम गलत घर में आ गए।
चाचा जी तो आ जाए।
चाचा जी ने आके क्या करने? तुमने जो बात करनी थी कर ली, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया।
लड़कियों के लिए बड़े शौक से लेके आई थी मिठाई, देसी की।
ये तो देसी घी की मिठाई वैसे नहीं खाती है, बू आती है इन्हें। तुम अब जाते हुए ना गांव ले जाना, वहां लोग खा जाएंगे।
तुम यहां तुम क्या क्या कर रही हो? आओ ना। भी चले जाएंगे किसी सराय किसी होटल में, तुम यहां से तो निकलो।
मेरे पास जीनत का पता है।
मैं कह रहा हूं कि तुम यहां से निकलो बस।
नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे।
आप प्लीज, पापा से प्लीज,
आप कहीं नहीं जाएंगे
प्लीज। सब लोग बैठे तो सही।
हम छोटे लोग, आप जैसे बड़े लोगों के काबिल
नहीं। अब्बास भाई प्लीज, आप बैठे तो सही।
पापा प्लीज जाओ, आप प्लीज की चाय बन लीजिए। आप प्लीज, हमारी किस्मत में तुम्हारी चाय।
बाजी
बता के बैठे हैं?
वो आज ही मैं होटल से खाना ले आती हूँ, आप प्लीज अंदर जाए।
आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ।
अम्मी प्लीज, खुदा के लिए, ये खालिद की बहन और बहनोई है।
कोई तारफ की जरूरत नहीं है, पता है मुझे खालिद के बहन और बहनोई है। आई बड़ी समझाने वाली मुझे।
अस्सलाम वालेकुम खाला जी।
वालेकुम सलाम।
वो खाला जी, हमें रास्ते में देर हो गई,
गाड़ी खराब हो गई होगी या बस लेट हो गई होगी। जो भी गांव से आता है बस ऐसे बहाने करता है।
बहाने?
अब मलिक साहब घर पे नहीं है, हम सारी औरतें हैं घर पे। अब बताओ इस वक्त कौन जाएगा बाजार तुम्हारे लिए खाने पीने की कुछ लेने?
ओ, आप इस बात की फिक्र ना करें, आप कोई खर्चा ना करें, हमको मेहमान थोड़ी है।
वो पता खाला जी रस्ते में क्या हुआ?
जो भी हुआ ठीक हुआ, मिट्टी डालो। ये तुम्हारे घर वाला?
जी।
अच्छा, तो ये है बासु कुमार
जी। मैं ही हूं बासु कुमार, टूटी हुई टांग वाला, लकड़ी की टांग है, लकड़ी की।
तो लकड़ी की टांग के साथ इतने सफर की क्या जरूरत है? अपने घर बैठते आराम से।
ये क्या कह रही है,
तुम चुप नहीं रहती?
खाला जी आपको तो पता है, हम खालिद के रिश्ते के लिए आए हैं, फरा का आत्मा हूं।
पर तुम्हें भी पता है कि हम मलक अवान है, जद्दी पुश्ती जिम्मेदार।
जी मालूम
मालूम है, तो फिर इस कुमार को साथ लेकर रिश्ता मांगने के लिए क्यों चली आई? अब देखो ना, तुरे वाली पग बांध देने से बंदा मलक या चौधरी तो नहीं ना हो जाता।
अल्लाह जी, ये कुम्हार है पर मेरा खामन है।
जैसे मैंने खालत को पहले ही बता दिया था कि कमियां में रिश्ता करना मेरा इज्जत का काट। चुप करो तुम,
उठो उठो, शायद हम गलत घर में आ गए।
चाचा जी तो आ गए।
चाचा जी ने आके क्या करने? तुमने जो बात करनी थी कर ली, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया।
जी मैं लड़कियों के लिए बड़े शौक से लेके आई थी मिठाई, देसी की।
ये तो देसी घी की मिठाई वैसे नहीं खाती, बू आती है इन्हें। तुम अब जाते हुए ना गांव ले जाना, वहां लोग खा जाए।
अम्मी
तुम यार, तू क्या क्या कर लो, आओ ना। कहीं भी चले जाएंगे, किसी सराय किसी होटल में, तो तुम यहां से तो निकलो।
मेरे पास जीनत का पता है।
मैं कह रहा हूं कि तुम यहां से निकलो बस।
नहीं नहीं, आप तो कहीं नहीं जाएंगे।
पापा प्लीज,
आप कहीं नहीं जाएंगे प्लीज, सब लोग बैठे तो सही।
हम छोटे लोग, आप जैसे बड़े लोगों के काबिल
नहीं। अब्बास भाई प्लीज, आप बैठे तो सही।
पापा प्लीज जाओ, आप प्लीज के राय बन लीजिए। आप प्लीज हमारी किस्मत में तुम्हारी चाय।
बाजी अब्बास भाई, अम्मी और अब्बा दोनों को आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, अभी तो वो सो गए, सुबह आपसे जरूर मिलेंगे।
शुक्रिया, इस वक्त तकलीफ देने की माफी चाहते हैं, असल वो ना हमें बाजार में बड़ी देर होगी।
तकलीफ कैसी अब्बास भाई, ये आपका अपना घर है।
वैसे भाभी जी खाना बड़ा ही मजेदार बना था।
शुक्रिया आपा, ये बब्बन मियां मेहमानों को देखकर बहुत खुश होते हैं और मशीन बन जाते हैं।
ऐसे किसी मौके पर शायर ने कहा है, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, जो बच के जाएं तो ये भी खुदा की कुदरत है।
अरे बब्बन मियां देख कर
वो आप इनको डांटे ना, हमें इस शेर की कोई समझ नहीं आई।
और हाँ आपा, एक साथ तीन तीन चार चार हांडियां रख देते हैं, लेकिन स्वीट डिश मैंने बनाई थी,
बड़ी अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
आपको शॉपिंग करना थी तो खालिद साथ ही आ जाता?
वो खालिद को गांव में काम था इसलिए नहीं आया।
वो असल में ना, हम दुकान ढूंढने में हमें बड़ी देर लगी, जब हम दुकान में लिए ना तो दुकानदार इतना सड़ियल था कि हम आपको बता नहीं सकते।
कोई बात नहीं, सुबह आप इंतजार और जीनत को साथ लीजिएगा, बल्कि बेगम तुम भी चली जाना।
हाँ हाँ क्यों नहीं।
नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने दुकान देख ली है।
हम खुद ही पहुंच जाएंगे।
इतनी जल्दी से नहीं, हम आपको जाने देंगे।
अभी तो जल्दी में जीनत, फिर आएंगे आराम से।
बेगम साहबा, आपा जो मिठाई लेकर आई चखी आपने? सुभान अल्लाह, बड़े अरसे के बाद खोया हुआ जायका याद आ गया।
अरे बबन मियाँ, आप खा भी चुके?
वो थोड़ी सी चखी थी, माफी चाहता हूँ।
कोई बात नहीं बबन मियाँ, जब खालिद आएगा ना मैं आपके लिए बहुत सी मिठाई भेजूंगी।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
वैसे बबन नाम कितना अच्छा है।
अच्छा, अगर तुम्हें बबन मियाँ नाम इतना पसंद है तो मेरा नाम आज से बबन मियाँ और बबन मियाँ आज से तुम बासु।
क्या फरमा रहे हैं तू?
बेटा, लोगों के काम करते हो, यूनुस को भी कभी याद किया है?
क्यों नहीं माँ जी, भाई है वो, खून है हमारा, एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा।
बेटा उसे तलाश करो।
वो भी करता हूँ माँ जी, जरूर मिल जाएगा किसी दिन।
जब जब मैं मर जाऊंगी।
पंजा ना करें माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं, हौसला रखें, मिल जाएगा किसी ना किसी दिन।
पापा जी के बगैर का कितना सुना सुना लग रहा है। कार का काम तो मैं कर देती हूँ, तो बाबू खालक जो अपनी चले गए ना तो माँ जी बड़ी उदास हो जाएगी। आप पापा सुर आपा जी को कहे कि वो यही आके रहे, आखिर इतना बड़ा कार है माशाल्लाह।
हाँ दारी, अगर वो राजी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
बाबू खालक भला आपकी बात कौन टाल सकते।
अच्छा माँ जी, मैं जरा दोस्तों से मिला।
अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा
बाबू खालक, मैं नजीब बीबी के पास गई थी माफी मांगने।
मिल गई माफी?
हाँ जी, बड़ी अच्छी है, पर उसने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया।
चल ठीक ही है।
वो कह रही थी जी कि आपकी उसकी सचमुच की मुलाकात हो गई है, और वो ये भी कह रही थी कि
दाड़ी खुदा के लिए कोई पैगाम तो नहीं ले आई उसका?
नहीं बाबू खालक, मुझे नसीहत हो गई है। वो तो ये कह रही थी कि अगर सर्वर ने उसको तलाक दे दी या वो फांसी लग गया तो वो उसी आदमी से शादी करेगी जो उसको छुड़ा के लाए।
दारी, वैसे तू बड़ी समझदारी की बातें करने लगी।
समझदार तो थी बाबू खालक, पर गरीबी ने मार दिया।
ठीक है, अच्छा मारी।
मैंने तो जहाज में नींद पूरी की।
अबू, आपा और बासु कल हमारे घर आए थे।
अच्छा, तो इतनी जल्दी जाने क्यों दिया भाई, मेरा इंतजार कर दिया होता।
अबू वो अम्मी ने उन्हें घर से निकाल दिया।
क्या, घर से निकाल दिया?
रिजवाना, बहुत चलने लगी है तेरी जुबान, काट दूंगी किसी दिन। बात क्या थे, मुकदमा खड़ा कर दिया कमबख्त ने। मलिक साहब, मैंने उसे बिल्कुल नहीं निकाला, यकीन जाने वो खुद ब खुद चले गए।
मगर क्यों?
अबू, अम्मी ने आपा से कहा था कि हम मलिक अवान होते हैं, तुम इस कुम्हार को भी साथ लेके आई हो अपनी।
माय गॉड,
आपा जाते हुए रो रही थी अबू। हाँ अबू, बहुत बुरी तरह रो रही थी।
देखिए, माँ की चुगलियां खाती है कमबख्त, जासूसियां करती हैं, और बाप क्या आते पहले मुकदमा खड़ा कर दिया कि आते कोई ना कोई झड़प हो जाए।
और तो क्या, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है मुझे।
वैसे मलिक साहब, मैंने तो कोई अफसोस नहीं किया था, पीर जी आए थे, वारिस आया था, वो मेहमान नहीं थे। मैंने तो कोई ऐसा झगड़ा ऐसा मुकदमा खड़ा नहीं किया उनके आने पे।
तो तुमने बदला लिया है उस बात का। खालिद अपनी हद तक बर्दाश्त कर सकता है, बहन और बहनोई की नहीं, हमें कभी माफ नहीं करेगा।
हाय हाय, तो ना करे माफ, हमें माफ कराने की जरूरत भी क्या है?
जरूरत है, और अगर जरूरत ना भी हो तो क्या आदमी को अखलाक, मुरव्वत और मेहमान नवाजी के अदब आदाब का दामन छोड़ देना चाहिए? शर्म आ रही है मुझे।
चाचा घर पे होते ना तो ये सब कुछ ना होता।
मेरी तो खैर है खालिद बाबू, पर तेरी आपा की बड़ी हद तक हुई।
हद तक नहीं, बेअदबी कहो। और तुम्हारी क्यों खैर है, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, बारावास के हीरो हो तुम।
कहां खड़े, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ना होता तो शायद ये सब कुछ ना होता।
तुम क्यों ना होते,
तुम्हारी और आपा की जिस घर में इज्जत ना हो ना, मैं उस घर में सारी जिंदगी कदम नहीं रखूंगा।
लेकिन इसमें फरा बिचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना?
किसका कसूर है किसका नहीं ये मुझे नहीं पता, बस ये मेरा आखिरी फैसला है।
ओ चाचा जी, वो गुलबर्ग वाले लोग हैं ना, हम उनसे मिले हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं और लड़की भी बड़ी अच्छी है।
ये बूझ लमे तो तेरी नहीं पता,
नहीं पता,
ये हम सब का वड वडेरा है।
वड वडेरा ये कौन है?
ओ मरे अबलीस।
ओ मरे अबाजी।
बोला कुछ रखे
ये तो अबाजी तो अपने अपने ही जिक्र कर लिया।
हाँ जी। खैर हो, भाग लगे रहे
अब जी।
और बच्चा
जी,
जब किसी का डंगर मर जाए तो क्या होता है?
डंगर मर जाए तो क्या होता है?
सबसे पहले कसाईयों को वक्त पड़ जाता है।
वो क्यों?
वो इसलिए एक टाइम से पहले पता चल जाता तो छुरी फेर के हलाल कर लेते और गांव में तकसीम कर देते।
तो गांव में क्यों तकसीम कर देते अब्बा जी?
वो इसलिए कि गरीबों को भावे उधार ही दे दो तो गरीबों का उधार वसूल हो जाता है।
अब्बा जी, गरीबों के पास उधार देने को होता क्या है?
हाय हाय, ओए बेटा, गरीब ही तो उधार वसूल कर देते हैं।
वो कैसे?
अमीरों का उधार वसूल नहीं होता।
वो कैसे अब्बा जी?
ये जितने भी अमीर हैं, इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, आज तक वापस हुआ है? भाग लगे रहे बेटा, डंगर की बात हो रही
थी। तो वो क्या होता है?
हाय हाय, डंगर जब मर जाता है तो खाल चूड़े चमियार उतार कर ले जाते हैं।
और जो वो बाकी बचता है वो कहाँ जाता है?
उसे कुत्ते खा लेते हैं।
कुत्ते?
हाँ, और कोकड़ गांव साइड पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और ऊपर से जो चीले हैं वो उसका भाव भी पूछती हैं।
वो कैसे?
वो ऊपर से भाव पूछती हैं, चीपा चीपा।
से कुत्ता जो है उसको जवाब देता है, वो कहता है मस्त 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 मस्त।
चौरी साहब डरने की कोई जरूरत नहीं, ये घर का पाला हुआ
है। पाला खुश रखे पाग लगे, और जो कोगड़ का है वो कहता